हिंदी में बोला, हिंदी में
नमो विहंताम नमो सिद्धाम नमो आर्याम नमो वृक्षाणाम नमो लोये त्रिकाल भक्ति सर्व साधन मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गुरु मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल्य मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्मानम जैनम जयति शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम जयंती योगिनम कामदम मोक्षदम सेव ओंकाराय नमो नमः नमः समेताराय स्वानुभूत्या चकाते चित्त भावाय भावाय सर्व भावांतरस्थिते अज्ञान किमिरांधानां ज्ञाना जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं सम्मीलनं तस्मै श्री गुरुवे नमः आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत् करोति चेत् सर्वभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारः मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान नमोता ही जाते भय अरिहंता विज्ञान ओम नमः देवी नमः देवी नमः देवी कि हमारे परमात्मा का शासन में कुनकुन आचार्य भगवान की आमनाई में भरत क्षेत्र में पूज्य गुरुदेव श्री का उदय वह अपने आप में एक तीर्थंकर पुरुष का उदय था। पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी सुनने से ये अनुभव हुए बिना नहीं रहता कि अपन महाविजय में है, क्योंकि 12 अंग और 14 पुरो का जो सार है वो पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी में इस तरह से प्रसारित होता है मानो हम भरत क्षेत्र में नहीं महाविजय में ही बैठे हो। शुद्धात्मा की बात भगवान आत्मा की बात जिस तरह से गुरुदेव के प्रवचनों में आती है ये बात स्पष्ट हुए बिना नहीं रहता कि यदि भरत क्षेत्र के अंदर में यदि कोई वक्ता है तो एकमात्र पूज्य गुरुदेव श्री है। ऐसा वक्ता कि जिन्होंने 2500 वर्ष में महावीर परमात्मा के पश्चात जिनेन्द्र शासन में भगवान आत्मा की बात लोप हो गई थी, प्रवाह पूरा उल्टा रहने लगा था समुद्र का, वो अपने अकेले बाहुबल से धोरी मार्ग पे प्रवाह को प्रवाहित किया, जहां पे धर्म की परिभाषा अधर्म के रूप में मानी जाती थी, धर्म का स्वरूप अधर्म को धर्म घोषित किया जाता था। इस परिस्थितियों के अंदर में स्वभाव की महिमा से शुद्धात्मा के बल से सिमंदर परमात्मा की आई हुई वाणी से कुनकुन आचार्य भगवान के आधार से उन्होंने जिस तरह से प्रवाहित किया, ये कहना बिल्कुल ही अतिरिक्त नहीं होगा के कहान शासन था। और उस शासन के अंदर में जो रत्न थे, चाहे पूज्य गंगश्रीबेन के रूप में, सोगानी जी के रूप में, लालचंद भाई के रूप में, या बाबूजी के रूप में, एक ऐसे रत्न थे इस युग के अंदर में जिन्होंने गुरुदेव के शासन की शोभा को बढ़ाई, गुरुदेव के दिए हुए तत्व को जन जन तक पहुंचाया, शुद्धात्मा की बात भगवान आत्मा की बात करते हुए ज्ञानियों तक की समर्पणता जो चरम सीमा पर देखी जाती थी इस युग के अंदर में सही में विरल विभूति आती है। आज तक आज से एक वर्ष पूर्व तक पूज्य बाबूजी का सानिध्य था, अब वो भी नहीं रहा, लेकिन इस युग के अंदर में जिससे गुरुदेव की वाणी शाश्वत रह गई, उसी तरह से ज्ञानी धर्मात्माओं की वाणी भी शाश्वत रह चुकी है, जो भी अपन ने बाबूजी के मुखारविंद से भी सुना। द्रव्य पर्याय की जो व्यवस्था है, पर्याय अपना श्रद्धेय के प्रति किस तरह से सर्वार्पणता करती, उसकी जो व्यवस्था है वो जिस तरह से स्पष्ट होती है, इसमें दूसरे विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं कि आत्मा की अनुभूति कैसे हो सकती है। बाबूजी एक ऐसा व्यक्तित्व था, क्योंकि शिविर पूज्य बाबूजी को समर्पित है, कभी अभी अपन बाबूजी की बात करें तो एक ऐसा व्यक्तित्व था जिन्होंने गुरुदेव श्री के 7 दिन के परिचय के अंदर में देव शास्त्र गुरु की पूजा केवल रवि किरणों की रचना कर दी, जिन्होंने एक जगह से दूसरे जगह बस में प्रवास करते हुए तूफान से चलती हुई बस को देखकर पाखंडों के महल ढहाका लोगों को तूफान चला रहे गुरुदेव को समर्पित किया। इतना ही नहीं, लेकिन आज तो कोटा के अंदर में गुरुदेव की आमना से, गुरुदेव की मान्यता से चलने वाला जिन मंदिर है, लेकिन जब दिगंबर मंदिर था और वहाँ पे गुरुदेव का फोटो लगा हुआ था और बाबूजी सौंदर्य में थे और कुछ विरोध हुआ, ये बात कही गई कि गुरुदेव का फोटो उतार दिया जाए, तो ये समाचार जब बाबूजी के पास में सौंदर्य पहुंचे तो उसी दिन वहाँ से चल पड़े वापस कोटा जाने के लिए, और उन्होंने वहाँ पे जाकर कहा कि ये फोटो नहीं उतर सकता, ये तभी ही उतरेगा जब आप हमारे ऊपर से गुजर जाओ, तब गुरुदेव का फोटो निकला है। बात जब गुरुदेव के पास पहुंची तो गुरुदेव ने ऐसा कहा, एमा तू आंधो उतारी लो जो हो तो अपने जरूरत माते करो, ये गुरुदेव के वचन है। और गुरुदेव के वचन जब बाबूजी तक पहुंचाया गया तो बोला, उसलिए तो हम उसको गुरुदेव कहते हैं, यदि वो ऐसा कहे कि हमारा फोटो रखो तो हम उसको गुरुदेव क्यों कहते हैं, पर यदि हम शिष्य होकर तो गुरुदेव का फोटो उतारने का बोले और हम उतार दे तो हम शिष्य कहते हैं। भक्ति है समर्पणता, सच्चे देव शास्त्र गुरु प्रत्येक की जो समर्पणता होती है उसका प्रकार ही अलौकिक होता है। जिन्होंने अपने जीवन के अंदर में पूज्य गुरुदेव की गुण गाथा भी उस तरह से गाई कि जिसका वर्णन करना किसी की भी बस की चीज नहीं थी। आज बाबूजी को श्रद्धांजलि यदि देनी है तो एक चैतन्य की चहल पहल के माध्यम से अपन दे सकते हैं, जिन्होंने इसके अंदर में तत्व ज्ञान, सम्यक दर्शन का विषय भाग प्रथम, सम्यक दर्शन का विषय भाग द्वितीय, उसमें पूज्य गुरुदेव श्री का जीवन दर्शन और ज्ञान का स्वभाव, सही में देखा जाए तो चारों तरफ से 12 अंग 14 गुरुओं का जो निचोड़ जो होता है इस विषय के अंदर में समाविष्ट है। और यदि इसको अपने सही तरीके से समझा तो बाबूजी को समझा, गुरुदेव को समझा, आचार्य भगवंतों को समझा, जिनेन्द्र भगवान को समझा, इसके अंदर में वो बात है जो आज तक अनादि काल से जीव ने आत्मा की चर्चा तो बहुत की, ज्ञान ने आत्मा संबंधी विकल्प तो बहुत किए, लेकिन त्रिकाली ध्रुव स्वभाव की जो समर्पणता होनी चाहिए वो आज तक नहीं हो पाई, उसका कारण क्या है, ये बात इसके अंदर में अत्यंत स्पष्ट है। पूज्य गुरुदेव श्री भावी तीर्थादिनाथ है, उसमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं है, लेकिन ये गुरुदेव के स्वभाव के जो रतन थे सारे के सारे, उनका स्थान कहाँ पे होगा ये भी चर्चा करने की बात नहीं है, क्योंकि जब तीर्थंकर का एक जगह से दूसरी जगह विहार होता है अंतिम 10 भाव के अंदर में, उनके समुसरण के केवलियों और गंधर्वों का छोटा नहीं रहता, ये सब वही व्यक्तित्व है जो उसी स्थान पे पाएंगे, देखे जाएंगे गुरुदेव श्री के समुसरण। तो आज उनको अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए तत्व के माध्यम से उनका गुणगान करें और तत्व यानी शुद्धात्म को देखने का सीधा सादा सरल विधान जो आज अपने पास में चैतन्य की चहल पहल के रूप में उपस्थित है। चैतन्य की चहल पहल को आज तक जीव ने समझा नहीं। चैतन्य की चहल पहल ज्ञान दर्शन रूप होती है, उसके अंदर में त्रिकाल ज्ञान का त्रिकाल जानना, त्रिकाल होता है और ध्रुव का ध्रुव बना। और यदि संपूर्ण चैतन्य की बात की जाए तो जानना देखना ये चैतन्य की चहल पहल है, लेकिन करना भोगना ये चैतन्य की सीमा रेखा से बाहर है। करना तो नहीं लेकिन जानना भी नहीं, कर्ता बुद्धि तो नहीं लेकिन ज्ञाता बुद्धि भी नहीं, दोनों ही मिथ्यात्व के रूप में। और अकर्ता स्वभाव में आने से जिसको कर्ता का व्यवहार कहा जाता है, ज्ञाता स्वभाव में आने से जिसको ज्ञाता का व्यवहार कहा जाता है, यह अनुभूति के बाद ये कर्ता और ज्ञाता लागू पड़ता है। अनुभूति के पहले तो मिथ्यात्व के अलावा और कुछ नहीं। अपन इस बात को इस चार लेखों के माध्यम से अच्छी तरह से समझें, यही बाबूजी को सच्चे रूप में सच्ची श्रद्धांजलि दी गई कह रहा है। अब पहला जो प्रकरण है तत्व ज्ञान, एक अनूठी जीवन कला। सबसे प्रथम तो जो हेडलाइन है कि तत्व ज्ञान एक अनोखी कला है। तत्व ज्ञान के अंदर में तत्वों का ज्ञान नहीं होता, तत्व ज्ञान होता। तत्व माने सात तत्व जो है ये पर्यायी भेद है, और उस सात तत्वों में से जो जीव तत्व की भी चर्चा है वो व्यवहार जीव की चर्चा है, उससे भी रहित एक शुद्धात्म तत्व जो है, परम्परायामिक भाव जो है, त्रिकाल भाव जो है, वो मैं हूँ ऐसा ज्ञान, वो एक जीवन कला है। अब किस तरह से है, किस व्यवस्था से है, ये बाबूजी के शब्दों में अपन देखेंगे कि क्या कहते हैं बाबूजी। बाबूजी ये कहते हैं कि सर्व विद्याओं में अध्यात्म विद्या का स्थान सर्वोपरि है, क्योंकि अध्यात्म विद्या के अतिरिक्त अन्य किसी भी लोक विद्या के पास आत्मा के स्थायी सुख की गारंटी नहीं है। जितने भी प्रकार की विद्या है उसके अंदर में जो अध्यात्म विद्या है उसके अंदर में स्थायी सुख की गारंटी है, और बाकी जितनी भी लोक विद्या है उसके अंदर में उसका स्वरूप ही विपरीत होता है तो स्थायी सुख की चर्चा ही हो नहीं सकती, बन नहीं पाती, क्योंकि लोक विद्या से प्राप्त समस्त सन्निधियां आत्मा की परिधि से बाहर होने से आत्मा का उनका उपभोग होता ही नहीं। लोक विद्या के अंदर में क्या होता है कि उसके अंदर में जितनी सन्निधियां हैं वो आत्मा की परिधि से बाहर है, और जब आत्मा की परिधि से जो बाहर है तो आत्मा उसका उपभोग करे सर्वथा असंभव और असत्य है। जब एक पदार्थ की दूसरे पदार्थ से सर्वथा भिन्नता है, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के साथ में कुछ भी आदान प्रदान नहीं है। गुरुदेव ने जिस दिन परिवर्तन किया संघट के अंदर में, तब चारों ऑफ इंडिया में जो प्रथम स्वाध्याय किया था उस स्वाध्याय के अंदर में गुरुदेव श्री का विषय यह था कि एक द्रव्य विद्या द्रव्य नु कहीं करी सकती नहीं। अब लोक विद्या जिस सन्निधिया की बात करती है वो सारे की सारी आत्मा की परिधि से बाहर है, और आत्मा की परिधि द्रव्य गुण और पर्याय है। द्रव्य गुण पर्याय के बाहर आत्मा का कहीं पे भी प्रसारण नहीं होता, द्रव्य गुण पर्याय के बाहर आत्मा जा नहीं सकता, तो अन्य जो बाहर की जो संपत्तियां हैं, चाहे कर्म के रूप में, चाहे रागादि भाव के रूप में, चाहे नो कर्म के रूप में, चाहे संयोग के अंदर में असंख्य पदार्थों के रूप में, आत्मा उसको भोग ही नहीं सकता। आदान प्रदान की कोई व्यवस्था ही नहीं दोनों पदार्थों के बीच में है। तो अपन दिल दिमाग से निकाल दे ते अपनी एक आदत सी पड़ी हुई है कि बाहर में कुछ भी 19-20 हो तो उनको ऐसा लगने लगता है कि हमारा उदय ऐसा है। अब आत्मा का उदय ही नहीं होता। आत्मा का उदय प्रत्येक समय से होने वाली जो पर्याय जो है वही आत्मा का उदय भाव है। बाहर में दिखने वाला कुटुम्ब परिवार इज्जत आबरू इत्यादि जो कुछ भी कहे जाते हैं वो सारे के सारे नौ कर्म के उदय है। और नौ कर्म के उदय को आत्मा भोग ले, एक कल्पना भी निश्चातों को प्रबल करने वाली है। बाहर में कर्मों का उदय इसको आत्मा भोगता है। जड़ के उदय को यदि चेतन भोग ले तो चेतन चेतन कहला जाता है। अपन जिस गुरु के पास में, जिस ज्ञानी धर्मात्माओं के सानिध्य में आए हैं, वहां पे इस बात को अत्यंत स्पष्ट कर ले कि हमारा अग्नि भाव क्या है और मैं अनुदय स्वरूप हूँ तो मेरे को उदय का कुछ लेना देना है कि नहीं। यदि आत्मा वस्तु की जो व्यवस्था है उनका कॉन्सेप्ट यदि अपने पास में स्पष्ट नहीं है तो ये जो उलझन अनादिकाल से जो चलती आ रही है वो आज भी चालू रहेगी। लेकिन ये अवसर है जिस अवसर से अपन मक्कम करते मजबूत ऐसे निर्दय करते भेदों का निषेध करते हुए, व्यवहार का निषेध करते हुए, पर पदार्थों की साक्ष्य इच्छा का निषेध करते हुए शुद्धात्मा के अंदर में प्रबलता से प्रवेश करे, ऐसा अवसर आज के दिन हमारे सामने जो उपलब्ध हुआ है। इनका सौभाग्य की यदि अपन कल्पना भी नहीं कर सकते क्योंकि कार्य सरलतम सरल है, इसको कठिन मानना ही कठिनाई है। आत्मा की अनुभूति कठिन नहीं हो सकती, कठिन मानी गई है उसलिए कठिनाई है। पर पदार्थ को संयोगों को अपना संयोग माना गया उसलिए उससे भिन्न होने में मुश्किलियां है। लेकिन जो चीज नई है नहीं, जो जड़ भाव है, जड़ भाव से चेतन भाव को क्या लेना देना, चाहे नौ कर्म हो, चाहे द्रव्य कर्म हो, चाहे भाव कर्म हो, तीनों के तीनों बिल्कुल जड़ है। पाप पुण्य के परिणाम हो, सुबह शुभ भाव हो, उससे आत्मा को क्या लेना देना। पर आत्मा की कौन सी पर्याय, कौन सी अवस्था, कहाँ से उत्पन्न होने वाली है, कौन सा आदान प्रदान आत्मा के साथ उसका होता है, कौन सा आत्मा का स्वभाव ऐसा है कि जिससे सुबह शुभ भाव का जन्म हो। जहाँ पर मार्ग स्थान गुण स्थान प्रमत अप्रमत की अवस्था को जलभाव कहा गया हो, ऐसे गुरु के शिष्य होकर अपनी शुद्धात्मा की बात, भगवान आत्मा की बात यदि प्रबलता से नहीं कर सकते हैं तो आज ये अवसर है जिस अवसर पे अपन इस बात को गहराई से समझे, चारों ओर से समझे और समझकर जहाँ पे वजन आना चाहिए वहाँ पे सुगंध जी साहब के शब्दों में प्रतिमा समान बैठ जाओ। प्रतिमा अचल होती है, शुद्धात्मा के अंदर में बैठ जाओ एकदम प्रतिमा बनकर। एक कैसे देखा जाए ये विधान इस लेखों के अंदर में बाबूजी ने स्पष्ट किया। तो क्या कहते हैं, परिधि से बाहर होने से आत्मा को उनका अवभोग होता ही नहीं है, अतः उनके पास आत्म शांति का कोई विधान ही नहीं, कोई विधान। लोक विद्या के पास में आत्म शांति का विधान हो कैसे सकता है, इसकी कल्पना भी मिथ्यात्व को प्रबल करने वाली है। आत्म शांति अध्यात्म विद्या का सर्वाधिकार सुरक्षित अधिकार है, सर्वाधिकार नहीं, सर्वाधिकार के साथ में सुरक्षित अधिकार है। किसका, आत्म शांति अध्यात्म विद्या का सर्वाधिकार सुरक्षित अधिकार है। और इस अध्यात्म विद्या के साधना का प्रारंभ कहाँ से होता है, तत्व ज्ञान से होता है। सबको सुख चाहिए, शांति चाहिए, और सुख और शांति आत्मा का स्वरूप है, आत्मा का स्वभाव है, और वह आत्मा को देखते ही उसके जन्म होता है। ये बात को यदि एक बार समझ लिया जाए तो कार्य अत्यंत सरल है। क्या कहते हैं, तत्व ज्ञान सर्व समस्याओं के समाधान की एक अद्भुत जीवन कला है। गुरुदेव श्री हमेशा बात कहा करते थे, क्या मार्ग देखे नहीं, कर्मो मार्ग से बलो मार्ग। जीव ये समझता है कि अनंत पुरुषार्थ से आत्मा की अनुभूति होती है, लेकिन जो पुरुषार्थ की मूर्ति है उसको कौन सा पुरुषार्थ चाहिए। जो पुरुषार्थ मय वस्तु है, पुरुषार्थ स्वभाव ही है, उसको कौन सा पुरुषार्थ चाहिए, तो पुरुषार्थ से उसकी अनुभूति हो। स्वभाव को स्वभाव से नहीं देखना, पर भाव से स्वभाव को देखना, पर्याय में बैठकर द्रव्य को देखना, द्रव्य को देखने का कोई विधान ही नहीं है। उसलिए कहते हैं तत्व ज्ञान सर्व समस्याओं के समाधान की एक अद्भुत जीवन कला, एक कला समझ में आनी चाहिए, जो पूरे से पूरे प्रवचन में अभी अपने भाव जी से सुनी जाते हैं। जीवन कला गुरुदेव के प्रवचन में भी सुनी, जो सात तत्व है स्वांग है, बिल्कुल बिल्कुल स्वांग है। आश्रो बंद और उसका अभाव करना और समर निर्णय को प्रकट करना, तूने कहां अहम कर रखा है, कहां इज्जत को कर रखा है, और इसी को पर्याय बुद्धि कहते हैं। आश्रो बंद का त्याग और समर निद्रा का ग्रहण करने के लिए तो तुला हुआ आनंद का, लेकिन जो सदाई मुक्त है, सदाई सिद्ध स्वरूप है, सदाई भगवान है, सदाई प्रकट है, तो नियम सर परमागम में आचार्य भगवान कहते हैं कि संसार और सिद्ध में किस नहीं से तफावत जानू, मेरे पास में ऐसी कोई नई ही नहीं है कि संसारी और सिद्ध के बीच में कोई तफावत जाना। तो वस्तु को देखने की कला है, जहाँ तक अपने आप को द्रव्य स्वभाव से नहीं देखा जाता, आत्म स्वभाव से नहीं देखा जाता, शुद्ध स्वभाव से नहीं देखा जाता, परिपूर्ण परमात्म तत्व हूँ ऐसा नहीं देखा जाता, तब तक पर्याय विधि रहती है। उसलिए तत्व ज्ञान को जीवन कला कहा। क्या कहा, वही जीवन का सर्वप्रथम कर्म और सर्वप्रथम धर्म है। जो तत्व ज्ञान है ये सर्वप्रथम कर्म भी है, सर्वप्रथम धर्म भी है। किस तरह से, उसके बिना यदि एक कला आपको नहीं समझ में आई, तो इस कला के बिना, इस तत्व ज्ञान के बिना, इस तत्व को देखने का ज्ञान की नींव के बिना, उस दृष्टि के बिना, जीवन के असीम वैभव के बीच भी दरिद्री और अशांत है, और उसके प्रादुर्भाव में सर्व जागतिक वैभव के बिना भी वह अकेला ही परमेश्वर है। यदि तत्व ज्ञान को देखने की कला आपके पास में है, तो संसार में कुछ भी आपके पास में नहीं हो, फिर भी आप परमेश्वर हो। और यदि कला समझ में नहीं आई, ये कला आपके पास में नहीं है, तो जगत का असंख्य वैभव भी आपको दरिद्री और अशांत ही घोषित करता है। चलेगा पूरा विषय तत्व ज्ञान के ऊपर में है, जहाँ पे बाबूजी इसको स्पष्ट करेंगे, जब स्पष्ट करेंगे तब उसको इसको ज्यादा स्पष्टीकरण करेंगे। तत्व ज्ञान वस्तु दर्शन की एक अलौकिक पद्धति है। तत्व ज्ञान माने क्या, तो कहते हैं वस्तु दर्शन की एक अलौकिक पद्धति। अपन ये समझते हैं कि सात तत्वों को समझ लिया तो सम्यक दर्शन हो गया, ऐसा नहीं है। सात तत्व जो है वो पर्याय के भेद है, उस पर्याय भेदों से त्रिकाली अभेद को देखा नहीं जाता। आज गुरुदेव जी ने प्रवचन के अंदर में मोक्ष को भी एक पर्याय, एक समय की पर्याय का स्वांग कहा। अब मोक्ष चाहिए, तो ये आप वस्तु दर्शन की जो अलौकिक पद्धति है उसे आप बाहर चले, क्योंकि आपने अपने आप को मोक्ष स्वरूप नहीं माना। आप हो मोक्ष स्वरूप, सर्व जीव के सिद्ध सम, जे समझे से खाए। मैंने इसमें आपको सिद्ध बनना नहीं है, आप सिद्ध हो। भगवान बनना नहीं है, भगवान हो। भगवान बनना है पर्याय दृष्टि, और भगवान हूँ अद्रव्य दृष्टि। सिद्ध हूँ अद्रव्य दृष्टि, और सिद्ध बनना है पर्याय दृष्टि। आश्रव बंध का अभाव करना पर्याय दृष्टि, संवर निद्रा को प्रकट करना पर्याय दृष्टि। इस पद्धति से तत्व दर्शन नहीं हो सकता। अपन को चलना है पूर्व दिशा में 2 कदम, अपन चलते हैं पश्चिम दिशा के अंदर में 500 कदम। अभी अपना लक्ष्य 502 कदम दूर हो गया, जो 2 कदम ही दूर था। आज गुरुदेव के शिष्य जो गुरुदेव की बात रोजाना सुनते हैं, स्वाध्याय चिंतन मनन करते हैं, उसके लिए सुधात्मा 2 कदम दूर है। द्रव्य दृष्टि के माध्यम से अलौकिक वस्तु को दर्शन की जो पद्धति है वो मैं हूँ ऐसा यथार्थ निर्णय, और इस यथार्थ निर्णय के बाद में पक्का निर्णय के नहीं ही हूँ वही अनुभूति है। और उसके बदले अपन विकल्पों के माध्यम से विकल्प को टालना है, निर्विकल्प करना है। सुगनी जी सब कहते हैं विकल्प और निर्विकल्प दोनों को छोड़ो, परवाह मत करो निर्विकल्प, क्योंकि मैं तो निर्विकल्प स्वरूप ही भगवान आत्मा हूँ ना। तो जब निर्विकल्प स्वभाव ही भगवान आत्मा हूँ तो निर्विकल्पता चाहिए, बात लाया कहाँ? तूने अपने त्रिकाल स्वभाव को नहीं माना, उसका विश्वास नहीं किया, उसमें एकत्व नहीं किया, उसमें अहम नहीं किया, उसकी दृष्टि नहीं की, और परिणाम के अंदर में विकल्प का अभाव हो और निर्विकल्पता प्रकट हो, ये दोनों ही क्या है? ये दोनों ही परिग्रह है, इसका नाम ही निष्ठा हुआ है। तत्वज्ञान वस्तु दर्शन की एक अलौकिक पद्धति है, वह लोक कथित वस्तु विधानों का विश्वासी नहीं है, और इसके अंदर में लोक कथित वस्तु विधानों माने एक जिज्ञासी के अंदर में दिया गया उपदेश कि संसार का अभाव करना है और सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, ये बात जिज्ञासी में भी कदम कदम पे की गई है। आश्रव बंध का अभाव करके, क्योंकि जब आश्रव की चर्चा चलती है तो ऐसा भी कहा जाता है जेम जेम आश्रव नो अभाव थतो जाय छे तेम तेम विज्ञान धन थतो जाय छे। जेम जेम जैसे जैसे आश्रव का अभाव होता जाता है वैसे वैसे विज्ञान धन होता जाता है। ये जिज्ञासा का प्रतिपादन है। इसमें तो समझ में ऐसा है कि जैसे जैसे विज्ञान धन होते जाता है वैसे वैसे आश्रव का अभाव होते जाता है। आश्रव का अभाव होते होते विज्ञान जन नहीं होता, लेकिन विज्ञान जन होते होते आश्रव का अभाव होता है। समझाने की शैली कुछ और है और समझने का विधान कुछ और है। समझाने की बात व्यवहार से होती है, समझाने की बात भेदों से होती है, समझने की बात अभेद से है। तो इसको समझे बिना वस्तु के प्रति जो महिमा आनी चाहिए, जो एक वस्तु दर्शन की जो अलौकिक पद्धति जो बाबू जी कहते हैं, वो अलौकिक पद्धति उसके जीवन के अंदर में प्रवाहित क्यों नहीं होती? क्योंकि वो चलता ही है भेद से, और जबकि व्यवस्था है कि जितना भेद जहाँ जहाँ भेद, चाहे फिर वो भेद आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चरित्र है, इसका भेद भी यदि है तो वहां पे मन है। जितना भेद विकल्प उतना मन, जितना अभेद वहां पे ज्ञान। ज्ञान अभेद ग्राह्य होता है और मन भेद ग्राह्य होता है। भेद आत्मा का स्वरूप ही नहीं है और अभेद वस्तु व्यवस्था है। स्वाभाविक अनादि अनंत अभेद भगवान आत्मा है, उसको जो जानता है वो ज्ञान। ज्ञान का स्वभाव भेद को ग्रहण करना नहीं है। पंचाध्यायकर्ता ने ऐसा कहा कि ज्ञान स्वभाव से अभेद ग्राह्य है, उसका कार्य अभेद को ग्रहण करना। एक ज्ञान और एक ज्ञेय, ऐसा ज्ञान भेद नहीं करता और भेद करे वो ज्ञान नहीं होता। क्या कहते थे, पदार्थों में पारस्परिक संबंधों की लोक रूप कहानी तत्व ज्ञान को समझ नहीं है। तत्व ज्ञान इसको समझ ही नहीं करता, लोक रूप कहानी को, संबंधों की वार्ता को एक्सेप्ट ही नहीं करता। एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य के साथ में कोई संबंध ही नहीं है, जबकि अध्यात्म तो कर्ता कर्म संबंध, कारण कार्य संबंध, निमित्त नैमित्तिक संबंध और ज्ञाता के संबंध को भी एक्सेप्ट नहीं करता। इसको कहते हैं अध्यात्म। जबकि लोक विद्या क्या करती है, तो परस्पर एक दूसरे के संबंधों की कहानी को समझ नहीं करता, वो उस लोक वार्ता को असत्य घोषित करता है, जहाँ दो पदार्थों में किंचित भी संबंध घटित किया गया हो, किंचित भी संबंध घटित किया गया हो, ऐसे लोक विद्या के जो संबंध की जो वार्ता है वो तत्व ज्ञान उसको असत्य घोषित करता है। वस्तु के साथ संयुक्त से दिखाई देने वाले दीर्घ काय संयोगों तक सीमित न रहकर वह वस्तु की छा लेता है। तत्व ज्ञान क्या करता है, वस्तु के साथ संयुक्त में दिखाई देने वाले दीर्घ काय संयोगों के तक सीमित न रहकर, उसकी सीमा तक सीमित नहीं रहता, लेकिन वस्तु की छा लेता है। वो संयोगों में नहीं जाता तत्व ज्ञान, वो वस्तु की छा लेता है, वस्तु का ओट लेता है, वस्तु की गहराई में जाता है और उसका अनुसंधान अति सूक्ष्म एवं गंभीर है। वह ऐसा गोताखोर है जो सागर के घनत्व माने ऊंडाई गहराई को तब तक भेदता जाता है जब तक उसे स्थिति के संपुट, स्थिति के संपुट माने पाताल की खजाना, पाताल के अंदर में जो खजाना है उसमें से मोती उपलब्ध नहीं हो। तो वस्तु की व्यवस्था जिसे समझ में आती है, तत्व ज्ञान की व्यवस्था जिसे समझ में आती है, वो न तो सात तत्वों के भेदों में अटकता है, न पर्याय भेदों में अटकता है और न गुण भेदों में अटकता है। वो किस तरह से वस्तु के भीतर भेदता हुआ चला जाता है, उसका पूरा का पूरा क्रम बाबूजी ने इस लेख के अंदर में लिया हुआ है। अपन सौभाग्यशाली तो है कि आज गुरुदेव के युग में अपने सबका जन्म हुआ, गुरुदेव श्री का सानिध्य मिला और जो ये बात लगातार सुनता है, इस बात का विश्वास करे कि मोक्ष के लिए वो अत्यंत निकट भव्य जी रहे हैं। दो चार भवों के अंदर में मोक्ष होना ही होना है, उसी के कान पे उसी के कर्ण पे बात बारंबार पड़ती है, लेकिन उसका भी ममत्व न रखे, गंभीरता से वस्तु की व्यवस्था को समझकर तत्वों में से तत्वों पे आकर इंद्रिय ज्ञान से अतिंद्रिय ज्ञान पर आकर, क्योंकि आत्मा की अनुभूति अतिंद्रिय ज्ञान में ही होती है, अतिंद्रिय ज्ञान से पकड़ में आने वाली वो चीज है। तो विकल्पों के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से वस्तु की गहराई तक पहुंचा नहीं जाता, श्रद्धा के माध्यम से, विश्वास के माध्यम से, अहम के माध्यम से, मैं एक ध्रुव परमात्मा हूँ ऐसा निर्णय के माध्यम से, यथार्थ निर्णय के माध्यम से, पक्के निर्णय के माध्यम से वस्तु तक पहुंचा जाता है। मार्ग सरल है, कठिन नहीं है। गुरुदेव श्री जी ये कहते हैं, सोगानी जी भी ये कहते हैं, श्रीमद जी भी ये कहते हैं कि आत्मा की अनुभूति सरल है, सहज है, सुगम है। और ये सरल सहज और सुगम जो आत्मा की अनुभूति, उसको परिश्रम वाली क्यों लगती है? उसका यदि कारण देखा जाए तो वो भगवान में बैठ कर बात नहीं करता, वो भक्त बनकर बात करता है। अपन भगवान का दर्शन करते हैं, किस तरह से करते हैं? भगवान के सामने खड़े रहकर। पर भगवान के सामने खड़े रहने वाला हमेशा भक्त होता है, भगवान नहीं होता। भगवान के पास में बैठने वाला भगवान हो सकता है। महावीर भगवान के पास में सिमंदर भगवान हो सकता है, पारसनाथ भगवान हो सकता है, लेकिन महावीर भगवान के सामने तो भक्ति खड़ा होता है। अपन पर्याय में बैठकर विकल्पों के माध्यम से द्रव्य को देखने की कोशिश करते हैं, कि द्रव्य को देखने का कोई विधान नहीं है। द्रव्य को देखने के लिए द्रव्य में बैठना होगा, द्रव्य में अहम करना यही पर्याय है। मैं ध्रुव हूँ, उसको द्रव्य का अहम कहा जाता है। द्रव्य में अहम करना नहीं है, अहम मैं ध्रुव, बाबू जी इसमें लेते हैं अहम मैं ध्रुव, ये मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। अपन वस्तु को स्वभाव से समझे। त्रिकाली ध्रुव वस्तु जो है, देखिए इसमें कहते हैं बार बाबू जी, तत्व ज्ञान का संपूर्ण विधान आत्मा के लिए है। वस्तुतः वह आत्मा की ही परिशुद्ध बोध अवस्था है। वह आत्मा के अनंत कष्टों के कारणों का निदान कर, क्या करता है? अनंत कष्टों का कारणों का निदान कर जीवन के शांति निकेतन का उद्घाटन करता है। यदि शांति निकेतन का उद्घाटन नहीं हुआ तो तत्व ज्ञान ही नहीं है। अपन कहते हैं अपन को तत्व ज्ञान सारा का सारा समझ में आता है, ये समझने का विधान नहीं है। सुनना, श्रीमद जी के तीन वाक्य, तीन शब्द है, सुनना, समझना और समझना। ये आपने सुना तो सुन के समझो और समझा तो उसने समझा, सांभरी समझी ने समझा। अपन सुनते तो है लेकिन सुनकर समझते नहीं है, और समझ भी लेते हैं तो ध्रुव में बैठकर ध्रुव की बात नहीं करते हैं, पर्याय में बैठकर ध्रुव की बात करते हैं कि हमारा इस जीवन का लक्ष्य सम्यक दर्शन है। अब जिनका लक्ष्य सम्यक दर्शन है उसको मिथ्या दर्शन चालू रहता है। मैं सुधात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं पंचम भाव हूँ, परम पारायणिक भाव मात्र वस्तु हूँ, निर्विकल्प मात्र वस्तु हूँ, ऐसा स्वभाव में अहम होते ही जो परिणाम का जन्म होता है उसका नाम सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन प्रकट करने के अभिप्राय से सम्यक दर्शन कभी नहीं होता, पर्याय का एकत्व ही होता है और पर्याय के एकत्व का नाम मिथ्या दर्शन। तो आज तक जीव ने भावना भाई सम्यक दर्शन की, जीव ने भावना भाई मोक्ष पद प्राप्ति की, केवल ज्ञान की, ये भावना पर्याय की है। और अभिप्राय के अंदर में उंडे उंडे कहीं से भी मैं परमात्मा हूँ ऐसा बोले, ऐसा समझे, लेकिन उसका हेतु यदि सम्यक दर्शन है तो सम्यक दर्शन होने वाला नहीं, क्योंकि आपको ईमानदारी से मानना है कि मैं परमात्मा हूँ। त्रिकाली ध्रुव जाए परमात्मा हो, ये बात आपको ईमानदारी से प्रमाणिकता से, क्योंकि ऐसा मेरा अनादि अनंत सिद्ध स्वभाव है। मेरे को प्रसिद्धि नहीं कि मैं प्रसिद्ध हूँ, सिद्ध भी हूँ और प्रसिद्ध भी हूँ, ऐसा इसी विद्यमानता हमेशा है, इसी हाजिरा हजूरता हमेशा है, ऐसा कभी जीव ने माना नहीं है। ये वह देखिए क्या कहते हैं, वह कहता है कि आत्मा सदा ही अविनाशी है, सदा ही अविनाशी, और पर्याय का तो स्वभाव है उत्पाद और विनाश। तो वो आत्मा कैसा है? सदा ही अविनाशी, अनंत शांति का निदान, परम वितराग, कि वितरकता नहीं चाहिए, वो है ही परम वितरक, सबसे अलग थलग, अनंत शक्ति पुंज, एक संपूर्ण चैतन्य सत्ता है, एक संपूर्ण चैतन्य। तत्व ज्ञान ये कहता है कि आत्मा सदा अविनाशी है, अब उत्पाद व्यय से कोई संबंध ही नहीं, और उत्पाद व्यय की भी व्यवस्था समझ ले कि उत्पाद को व्यय की अपेक्षा नहीं, व्यय को उत्पाद की अपेक्षा नहीं, वर्तमान उत्पाद को पूर्व के उत्पाद की अपेक्षा, पूर्व के पर्याय की अपेक्षा नहीं, वर्तमान उत्पाद को बाल के उत्पाद की अपेक्षा है, तो पर्याय भी होने योग्य, हवा योग्य, जिस समय जो पर्याय होनी है उस समय वही पर्याय होती है, ऐसा क्रमबद्ध स्वभाव यदि पर्याय का समझ में आ जाए तो पर्याय की एकता सूचे बिना नहीं रहता, पर्याय से दृष्टि मिल जाती है, जो पर्याय होनी है चाहे पर्याय के अंदर में विकल्प हो या निर्विकल्प का, उसकी परवाह नहीं करता आत्मा की, उसको ऐसा चाह नहीं रहता कि विकल्प का अभाव हो और निर्विकल्पता का जन्म हो, संसार का अभाव हो और मोक्ष का जन्म हो, ऐसी चाहना आत्मा की को नहीं रहती, परिग्रह है बिल्कुल, और इस परिग्रह के अंदर में आपका डिग्री स्वर्ण का ग्रहण नहीं हो सकता। देखिए अनंत काल में द्रव्य नहीं भी अनंत बार हुआ तो उसमें कौन से प्रयत्न बाकी रह गए, कौन सी बात उसने भगवान की मानी, एक सुधात्म तत्व को, एक ध्रुव तत्व को, एक अपरिणामी तत्व को, मैं स्वभाव से अचल अपरिणामी निष्क्रिय परमात्मा ही हूँ ऐसा विश्वास नहीं किया, बाकी सब कुछ किया, एक चीज को छोड़कर बाकी सब कुछ किया, ये बात सदा ही अविनाशी अनंत शांति का निधान, परम वितराग, सबसे अलग थलग, अनंत शक्ति पुंज, एक संपूर्ण चैतन्य सत्ता है, ऐसा नहीं हो, संपूर्ण चैतन्य सत्ता, अब जो संपूर्ण है उसको कौन होगा तो संपूर्ण होगा, दूसरा कौन अपूर्ण पूर्ण होगा तो संपूर्ण कहा जाएगा, जो स्वभाव से संपूर्ण है, जो स्वभाव से परिपूर्ण है उसको क्या चाहिए, उसको संपूर्ण को संपूर्ण नहीं माना, अब यदि मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ तो मैं क्या चाहिए, सिमर परमात्मा को क्या चाहिए, जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको कुछ चाहिए क्या, तो अपनी राह अनादि काल से ऐसी रही तो सात तत्वों की मर्यादाओं के बीच में आश्रव बंध का अभाव और संवर निद्रा का जन्म करने के लिए वो तरसता रहा, तरसता रहा, वही प्रयत्न करता रहा कि कैसे आश्रव बंध पतले हो, गले और फिर तले, अब ये व्यवस्था ही, उसने मिथ्या को गालने का प्रयत्न किया तो गलते गलते चल जाएगा, ऐसी मान्यता रखी, विधान ही नहीं है, मार्ग की जो अलौकिक पद्धति जो है उसको समझ, वो कला समझ में नहीं आएगी, इसमें बल का कुछ काम ही नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं करना उसका नाम पुरुषार्थ है, करना उसका नाम कर्ता बुद्धि है, अब करने को उसने पुरुषार्थ माना और कर्ता बुद्धि को ज्ञान माना, जो प्योर मिथ्या है, प्योर मिथ्या ज्ञान है, स्वभाव को स्वभाव से नहीं देखा, परिपूर्णता को परिपूर्ण स्वभाव से नहीं देखा, तो उसकी जो महिमा आनी चाहिए, उसकी जो अपरंपारता, उसकी जो अद्भुतता, अलौकिकता, पूर्णता सदा ही विराजमान है, सदा ही विद्यमान है, और जो ज्ञान के अंदर में सदा ही प्रकट है, विद्यमान है, प्रकट उत्पन्न होते हुए ज्ञान पर्याय के अंदर में जिस ज्ञायक आत्मा की सदा ही मौजूदगी है, उसको प्रकट करने के लिए वो प्रयत्न करता रहा, उसको जानने का वो प्रयत्न करता रहा, जबकि व्यवस्था है कि जाए
जानने में आता है, जो जानने में आता है उसको जानने का प्रयत्न किया, तो ये ज्ञाता बुद्धि है। पर का ज्ञान कभी हो ही नहीं सकता, तो पर मेरे ज्ञेय है, उसको ज्ञेय कोटि में रखा, तो पर का ज्ञान होता ही नहीं है, तो ज्ञेय कोटि में रहेंगे कहां? हमें जो तत्व ज्ञान की जो सूक्ष्मता है, जो गहराई है, उसको उससे स्पर्श करने की कोशिश नहीं की कि शास्त्र में ऐसा उपदेश आता है कि पर को जानना बंद करो, लेकिन पर को जानता ही नहीं है तो क्या बंद करो? स्वभाव को जानो, स्वभाव जानने नहीं आता है, कैसे जानना है? ये विद्या जो है, ये जो अलौकिक लोकोत्तर जो विद्या है, उसमें समझाने का विधान कुछ और है और समझने की व्यवस्था कुछ और है, पर जानने में नहीं आता। हमेशा अपने ज्ञान पर ही ऐसा ज्ञान होता है, गुरु ने कहा अपने ज्ञान पर ही ऐसा ज्ञान होता है, जीव का ज्ञान होता ही नहीं, तो उसको क्या बंद करे? और भगवान आत्मा जानने में आता है, जानन हर जानने में आता है, उसको जानो ऐसा उद्देश्य, तो जानो माने मैं हूँ ऐसा विश्वास कर। अद्भुत से अद्भुत अपना स्वभाव है गुरुदेव श्री के मंगल प्रताप से, श्रीमंगल परमात्मा के सिद्धिवाणी कुनकुन भगवान के माध्यम से और गुरुदेव के आत्मानुभूति के माध्यम से, देह परिवर्तन करके भी असंख्य अब्जो वर्षों की वाणी गुरुदेव श्री साथ में लेकर आए, और साथ में लेकर आए तो अकेले नहीं आए, ज्ञानियों की एक मंडली लेके आए, टोली लेके आए, जो उनके साथ ही विचरते हुए विहार करते हुए गुरुदेव के साथ साथ चारों भाव में आत्म आराधना को प्रबल करते हुए मोक्षपुरी की ओर प्रयाण करेंगे, उसमें से एक अग्रस्थान पूज्य बाबू जी का है। ऐसे महापुरुषों को अपने जीवन के अंदर में अपने पाया, तत्व ज्ञान को देखने का विधान इस महापुरुषों के माध्यम से सरलतम सरल भाषा में अपने पास में प्रस्तुत है, और इस जब से अक्सर की प्रथा जो चालू ही है, इसके अंदर में गुरुदेव के हृदय को, ज्ञानियों के हृदय को अपन खूब ही सरलता से समझ सकते हैं। अपन सबको इस स्वभाव से चैतन्य सत्ता ही है, भगवान ही है, परिपूर्ण परमात्मा ही है, ऐसा विश्वास करे, ऐसा श्रद्धान करे, तो उसी मार्ग से गुरुदेव के श्रीमद जी जैसे कहते हैं गुरु के पुठे पुठे में चायला जसू, ऐसे अपन सब भी गुरुदेव का खेत पकड़ते हुए गुरुदेव के पूछे पूछे समोसरम की ओर आगे बढ़ते हुए, समोसरम में गुरुदेव से पहले जो गुरुदेव को तीर्थंकर पने का काल असंख्य अब्जो वर्षों का है, तो उतना काल अपने को इंतजार नहीं करना, अपने को गुरुदेव के पहले मोक्ष में जाना और गुरुदेव का मोक्ष में स्वागत करना, इसी भावना से अपन सबको गुरुदेव के सच्चे शिष्य बने रहे, इसी मंगल भावना से। Thank you.